नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु, 15 लोग घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत ने 90 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर की संभावना। यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से घरेलू शेयर सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट। और टेबल टेनिस में भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में WTT फीडर काराकास में दोहरे खिताब जीते। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज एक बस के गहरी खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 घायल हो गए। खबरों के अनुसार गढ़वाल से कुमाऊं जा रही ये बस कूपी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक रिपोर्ट।
पौड़ी के नैनी डांडा से 55 यात्रियों को ले जा रही बस अल्मोड़ा के कूपी मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 36 यात्रियों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रूपये देने की घोषणा की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये और घायलों को 1-1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान झारखंड के लोगों के साथ धोखा किया है। श्री मोदी ने गढ़वा के चेतना मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों से झूठे वादे किए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से झारखंड में प्रगति की रफ्तार दोगुना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने को कहा।
हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यहाँ आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है।
श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री चाईबासा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल चरम पर है। दोनों प्रमुख गठबंधन सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी अपने विद्रोही उम्मीदवारों को शांत करने और उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
भाजपा के बागी नेता गोपाल शेट्टी ने बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भरा हुआ नामांकन वापस ले लिया है। शिवसेना के माहिम के उम्मीदवार सदा सरवणकर ने ये इच्छा जताई है कि वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार और पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी पर चर्चा करेंगे, इस शर्त पर कि मनसे महायुति के खिलाफ, खासकर शिवसेना के खिलाफ, मुंबई में अपने उम्मीदवार वापस ले ले। मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे ने अपने सभी उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए निर्देशित किया है। नांदेड़ जिले में अब तक 3 विधानसभा क्षेत्रों में 21 नामांकन पत्र वापस लिए जा चुके हैं। इसी बीच मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसळकर को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
सुनो सुनो पेंशनर सुनो, जीवन का प्रमाण बनो, हाथ में मोबाइल ले लो, चेहरे का पहचान ले लो, आसान है इजी है ऐप, इसकी क्रेजी है, आपकी ही मर्जी है, अपना लो ये अर्जी है, फेस का ऑथेंटिकेशन, लाइफ का वेरिफिकेशन, देना ही है कंपल्शन, कर दिया सिंप्लीफिकेशन, कहीं जाने की जरूरत कहाँ, फेस ऑथेंटिकेशन कहाँ, फिर भी जाने की जरूरत जहाँ, डीएलसी के कैंप वहाँ, कभी जाने की जरूरत कहाँ, EOPPW जहाँ, हम लोगों का पहल अनोखा, बदला भारत कर धमाका।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य में 90 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित कर ली है। श्री जोशी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 37.5 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वैश्विक सौर क्षेत्र के लगभग 2 टेरावाट स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता तक पहुंचने की पूरी संभावना है।
सोलर एनर्जी वंस अ जस्ट विजन इज नाउ ए पावरफुल रियलिटी लीडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड ए क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल पाथ। इन 2024 द ग्लोबल सोलर सेक्टर इज सेट टू रीच अप्रोक्सिमेटली 2 टेरावाट ऑफ द इंस्टॉल्ड सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रवाद के मूल्यों के साथ बिना किसी पक्षपात के सभी भारतीय नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय लोक सेवा लोक प्रशासन संस्थान IIPA की 70वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पॉल एच एपलबी पुरस्कार और डॉ राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्रदान किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि ये दूतावास क्वींसलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने, व्यापार बढ़ाने, शैक्षणिक संपर्क का विस्तार करने और भारतीय मूल के लोगों को सुविधा पहुंचाने में योगदान देगा। उन्होंने इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के निरंतर मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस महावाणिज्य दूतावास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से पिछले वर्ष किया गया वादा पूरा हो गया है। उन्होंने क्वींसलैंड के गवर्नर डॉ जिनेट यंग से भी मुलाकात की। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की आवश्यकता होती है। ताजा जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार चुनाव में हार जीत 7 महत्वपूर्ण राज्यों एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया के चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना में रैली की और अपनी प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर निशाना साधा। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मिशिगन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली में गजा में युद्ध समाप्त करने, बंधकों की घर वापसी, फिलिस्तीनियों के सम्मान तथा आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ साथ इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष डेविड शर्मा।
भारत और अल्जीरिया ने आज द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और रणनीतिक हितों को बढ़ावा मिलेगा। सेना और अधिकारियों की उपस्थिति में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ सईद चनेग्रह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश सरकार ने उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पिछले दिनों 10 जंगली हाथियों की मौत के बाद फील्ड डायरेक्टर और सहायक वन संरक्षण को निलंबित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
हाथियों की मृत्यु के बाद वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया था। प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई कीटनाशक नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आना शेष है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उमरिया से लौटे उच्च स्तरीय दल से हाथियों की मृत्यु के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। वन राज्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल ने विभिन्न पहलुओं की जाँच और अध्ययन का विवरण दिया। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ताकि हाथी मानव सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हाथी मित्र भी बनाए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा में मंदिर और धार्मिक पूजा स्थल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। श्री बिट्टू ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा में भारतीय प्रवासियों को विभाजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सिख और हिंदू सद्भाव में रहते हैं, लेकिन कनाडा में उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और इस सप्ताह फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों के बीच सतर्कता के कारण बैंकिंग, वित्तीय और आईटी शेयरों में बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज 1.5% से अधिक गिर गए। अंतिम समाचार मिलने तक बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1291 अंक यानी 1.62% गिरकर 78,433 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 427 अंक यानी 1.76% गिरकर 23,877 अंक पर आ गया। रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए 185 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि छठ पर्व मनाने जा रहे यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए मांग आधारित ट्रेन भी चलाई जा रही है।
छठ पर्व को देखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा जाने वाले लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। नॉर्मल ट्रेन के अलावा आज दिल्ली एरिया से 25 स्पेशल ट्रेन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम अर्थात पूरी भारत के क्षेत्रों को जाएंगी और ये जो रूटीन में हमारी करीब 50 ट्रेन चलती हैं उनके अलावा होंगी। इसके अतिरिक्त हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे जो कम्प्लीट जनरल कोचेज वाली होंगी।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यात्रियों को दी जा रही सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय यात्रा पर आज नागालैंड पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल राज्य की वित्तीय योजना और विकास पहलों से संबंधित प्रमुख मौद्रिक मुद्दों की समीक्षा और चर्चा करेगा। वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उनके मंत्रिमंडल और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेगा। भारत के हरमीत देसाई ने आज वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल्स में जीत दर्ज कर दोहरे खिताब जीते। मिक्स डबल्स में देसाई और उनकी जोड़ीदार कृतिका रॉय ने क्यूबा के जॉर्ज कैंपोस और डेनियला फोंसका कैरेजाना की जोड़ी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 से हराया। इससे पहले उन्होंने चीन के वांग काइबो और लियो शुनराय को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हरमीत देसाई ने पुरुष सिंगल्स में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फ्रांस के जो फ्राइड को 3-0 से हराया। इससे पहले उन्होंने पुर्तगाल के जुआओ मोंटेइरो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। देसाई की सफलता अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाती है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साह ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में आखिरी बार खेलेंगे। रिद्धिमान साह ने वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर अपराधों से निपटने के विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु, 15 लोग घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत ने 90 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। और टेबल टेनिस में भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में WTT फीडर काराकास में दोहरा खिताब जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।